नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया और कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो क्रोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूं।
श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री आज पेरिस में वीवाटेक शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद भी करेंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप एल के मुकाबले में इंग्लैंड क्रोएशिया से 3-2 से आगे है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। वहीं ग्रुप के में पुर्तगाल और DR कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। इस मैच में मनप्रीत सिंह ने अपना 413वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलकर भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। चीन के गुयांग में चल रहे विश्व मुक्केबाजी कप में भारत के निखिल, दीपक और स्नेह ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला T20 विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।